एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में, आप सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, कैथोलिक धर्म।
जी हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जाने माने धर्म शास्त्री हैं, जेरल्ड ओ कॉलिंस।
उनकी 2 किताबों का सार है हमारे पास। एक में थोड़ा विस्तार से बताया गया है और दूसरी किताब एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त परिचय देती है।
बिल्कुल, तो आज की इस बातचीत में हमारा इरादा है कि कैथोलिक धर्म की जो मान्यताएं हैं, उसका इतिहास और आज की दुनिया में उसकी क्या जगह है, उसे ओ कॉलिंस के नजरिए से समझने की कोशिश करें।
हाँ, क्योंकि देखिए, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी इससे जुड़ी है, लेकिन फिर भी इसे लेकर कई तरह की, मतलब, धारणाएं फैली हुई हैं।
सही कहा, कुछ सही होती हैं, कुछ शायद उतनी नहीं।
तो कोशिश रहेगी कि ये संतुलित और जानकारी से भरी चर्चा हो। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना या कोई, यू नो, राय थोपना बिल्कुल नहीं है।
एकदम सही। तो शुरुआत करते हैं लेखक से ही, फादर जेराल्ड ओ कॉलिंस।
जी, ये ऑस्ट्रेलिया के एक जेसुइट पादरी थे। 2021 में उनका निधन हुआ। और वो सिर्फ पादरी नहीं थे बल्कि अपने जमाने के कैथोलिक धर्मशास्त्र के बड़े विद्वानों में गिने जाते थे।
हाँ, मैंने पढ़ा कि रोम की जो जानी मानी पोंटिफिकल ग्रिगोरियन यूनिवर्सिटी है,
हाँ,
वहाँ उन्होंने 30 साल से ज्यादा पढ़ाया।
बिल्कुल, और 60 से ज्यादा किताबें लिखी, खासतौर पर ईसा मसीह के अध्ययन में, जिसे क्राइस्टोलॉजी कहते हैं, उसमें उनकी बड़ी महारत थी।
अच्छा, तो ओ कॉलिंस में ऐसा क्या खास था, मतलब उनका नजरिया क्यों अहम है?
देखिए, उनकी सबसे दिलचस्प बात शायद ये थी कि उनमें एक विद्वान की जो गहरी समझ होती है,
हाँ,
और एक पादरी का जो जमीनी तजुर्बा होता है लोगों के बीच रहने का,
हाँ,
उन दोनों का एक गजब का मेल था। वो कैथोलिक परंपरा को अंदर से जी रहे थे, पर उसे बाहर से एक विश्लेषक की तरह देख भी सकते थे।
अच्छा, ये तो कमाल की बात है।
और जेसुइट होने की वजह से उनका जोर हमेशा बौद्धिक जिज्ञासा और दुनिया के साथ जुड़ने पर रहा। शायद इसीलिए वो धर्म की गहरी, थोड़ी मुश्किल लगने वाली बातों को भी आम लोगों के लिए समझने लायक बना पाए।
तो अपनी किताबों के जरिए वो असल में करना क्या चाहते थे, उनका मकसद क्या था?
उनका मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक धर्म को सिर्फ रस्मों रिवाजों या पोप से जुड़ी एक संस्था के तौर पर दिखाने से आगे जाना।
अच्छा,
वो इसे एक जिंदा, मतलब एक सांस लेती हुई परंपरा की तरह पेश करते हैं, जिसमें धर्मशास्त्र यानी सोचने विचारने का पहलू है, रूहानियत है, संस्कृति है, समाज सेवा है, सब कुछ शामिल है।
तो ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है?
बिल्कुल नहीं। उनका जो केंद्रीय तर्क है वो ये कि कैथोलिक धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जो लगातार विकसित हुई है। उसने अपने जो मूल सिद्धांत हैं उनको पकड़े रखा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ खुद को ढाला भी है।
ये दिलचस्प है, मतलब बदलाव भी और निरंतरता भी।
हाँ, यही इसकी ताकत है। ये आस्था और तर्क, परंपरा और नई सोच, पूरी दुनिया के लिए एक जैसे उसूल और स्थानीय रंगत, इन सबको एक साथ लेकर चलता है। ओ कॉलिंस इसे दोनों और, बोथ एंड वाली सोच कहते हैं।
दोनों और?
हाँ, मतलब ये पुराना भी है, नया भी, संस्था भी है, निजी एहसास भी, पूरी दुनिया के लिए भी है और हर जगह के लिए थोड़ा अलग भी। और एक और खास बात पर वो जोर देते हैं, सांस्कारिक विश्व दृष्टि, सैक्रामेंटल वर्ल्ड व्यू।
सांस्कारिक विश्व दृष्टि, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका?
हाँ, शब्द थोड़ा भारी है, आसान भाषा में कहे तो ये वो विश्वास है कि ईश्वर या जो दिव्य शक्ति है वो सिर्फ हमारे विचारों या भावनाओं में नहीं रहती।
अच्छा।
बल्कि हमारी देखी छुई जा सकने वाली ये जो भौतिक दुनिया है, इसकी चीजों के जरिए भी हमसे मिलती है, खुद को जाहिर करती है।
जैसे कि?
जैसे पानी, रोटी, तेल, ये रोजमर्रा की चीजें भी पवित्र बन सकती हैं और ईश्वर के अनुभव का माध्यम बन सकती हैं।
तो ये सोच धर्म को रोज की जिंदगी से जोड़ देती है।
बिल्कुल, यही इसका पॉइंट है।
अच्छा, ये दिलचस्प है। चलिए अब ओ कॉलिंस के इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ईश्वर, ये दुनिया और हम इंसानों का भविष्य, इस पर कैथोलिक नजरिया क्या कहता है?
कैथोलिक मानते हैं कि ईश्वर एक है, वो इस दुनिया से परे भी है, मतलब ट्रांसेंडेंट, और पर्सनल भी, यानी आप उससे रिश्ता बना सकते हैं, वो ही इस पूरी सृष्टि का रचयिता है।
ठीक है।
लेकिन ईसाई धर्म की जो सबसे अनोखी बात है वो है त्रित्व, यानी ट्रिनिटी का सिद्धांत।
हाँ, ये अक्सर सुनने में आता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा।
सही। इसका मतलब ये नहीं कि 3 भगवान हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ही ईश्वर 3 व्यक्तियों, पिता, पुत्र यानी ईसा मसीह और पवित्र आत्मा के रूप में है और ये तीनों आपस में एक गहरे प्रेम के रिश्ते में बंधे हैं।
इसे एक रहस्य माना जाता है ना?
हाँ, ये आस्था का एक बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह समझना इंसान के बस में नहीं माना जाता।
और इस पूरी तस्वीर में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं?
इंसान को ईश्वर की छवि या अक्स, जिसे इमागो देई कहते हैं, उसमें बना हुआ माना जाता है।
इमागो देई?
हाँ, इसका मतलब है कि हर इंसान में सोचने समझने की शक्ति है, सही गलत चुनने की आजादी है जिसे स्वतंत्र इच्छा कहते हैं, और एक अंदरूनी गरिमा है हर इंसान में, चाहे वो कोई भी हो।
लेकिन फिर वो मूल पाप या ओरिजिनल सिन की बात भी आती है, वो क्या है?
हाँ, वो भी है। देखिए, ये कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमें विरासत में मिला है, जैसे कोई कर्जा, बल्कि ये इंसान की एक अंदरूनी कमजोरी या झुकाव है जो उसे स्वार्थ की तरफ, ईश्वर से दूरी की तरफ ले जाता है, एक तरह की घायल अवस्था कह लीजिए।
तो क्या इंसान इसी में फंसा रहता है, कोई रास्ता नहीं?
नहीं, रास्ता है। यहीं पर अनुग्रह यानी ग्रेस का कॉन्सेप्ट आता है।
अनुग्रह?
हाँ, ये ईश्वर का मुफ्त तोहफा है, उसकी मदद, उसकी शक्ति जो इंसान को बदल सकती है और इस कमजोरी से उभरने में मदद करती है।
और भविष्य के लिए क्या उम्मीद है?
भविष्य के लिए उम्मीद है शरीर के फिर से जी उठने पर, जिसे पुनरुत्थान कहते हैं, अंतिम न्याय पर, और आखिर में पूरी सृष्टि का ईश्वर के साथ एक हो जाना, जिसे नए स्वर्ग और नई पृथ्वी कहा गया है, एक तरह की अंतिम पूर्णता।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ईसा मसीह की ओर। जाहिर है वो कैथोलिक आस्था के बिल्कुल केंद्र में है।
बिल्कुल, और कॉलिंस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यीशु सिर्फ एक नेक इंसान या पैगंबर नहीं थे। कैथोलिक विश्वास का जो आधार है वो है अवतार यानी इनकार्नेशन का सिद्धांत।
अवतार यानी ईश्वर का मनुष्य बनना?
हाँ, बिल्कुल। ये मानना कि खुद ईश्वर यीशु नाम के एक खास इंसान के रूप में पूरी तरह से मनुष्य बन गया, ये ईसाई धर्म का सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाला और बुनियादी दावा है।
और ये कब तय हुआ, मतलब चर्च ने इसे कब साफ किया?
एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी 451 ईस्वी में चैल्सीडन नाम की जगह पर। उस परिषद ने यह साफ किया कि यीशु एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें दो स्वभाव हैं, वो पूरी तरह ईश्वर भी हैं और पूरी तरह इंसान भी।
अच्छा, दोनों एक साथ?
हाँ, इसे हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। वो सिर्फ भगवान या सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि दोनों एक ही व्यक्ति में पूरी तरह से।
और उनकी मृत्यु और फिर जी उठने का क्या महत्व बताया जाता है?
देखिए, उनकी मौत को सिर्फ पापों की सजा या कीमत चुकाने के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि उसे प्रेम और आत्म बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, एक ऐसा काम जिसने बुराई और मौत पर जीत हासिल की।
और उनका जी उठना, पुनरुत्थान,
उसे कोई कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना माना जाता है, और यही ईसाइयों की उम्मीद का सबसे बड़ा आधार है।
ठीक है, अब बात करते हैं त्रित्व के तीसरे व्यक्ति की, पवित्र आत्मा। चर्च के लिए उनका क्या रोल है?
पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र के बीच बहने वाली प्रेम और जीवन देने वाली शक्ति के रूप में समझा जाता है।
अच्छा,
बाइबल में जिक्र आता है कि वो सृष्टि की शुरुआत में मौजूद थी, यीशु के जीवन में सक्रिय थी, और फिर पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरितों पर उतरी, जिससे चर्च का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है।
तो वो चर्च को चलाती हैं एक तरह से?
हाँ, उन्हें चर्च की आत्मा या जान कहा जाता है। माना जाता है कि वो चर्च को रास्ता दिखाती हैं, पवित्र बनाती हैं, और खासकर जो संस्कार होते हैं उनके जरिए ईसा मसीह को आज भी लोगों के बीच मौजूद कराती हैं। ये जो त्रित्व का पूरा विचार है, ये दिखाता है कि ईश्वर कोई अकेला राजा नहीं, बल्कि प्रेम का एक समुदाय है, एक रिश्ता है।
इसके बाद चर्च की अपनी पहचान की बात आती है। एक पुराना कथन है नाइसीन पंथ, उसमें चर्च के चार निशान बताए गए हैं, एक पवित्र, कैथोलिक और प्रेरितिक। इनका क्या मतलब है?
हाँ, ये चार निशान बहुत अहम है। एक का मतलब है कि चर्च अपनी आस्था में और पोप के नेतृत्व में एकजुट है। पवित्र इसलिए कि इसकी शुरुआत ईश्वर से हुई है, भले ही इसके सदस्य जो इंसान हैं वो गुनाहगार हो सकते हैं।
मतलब चर्च खुद पवित्र है, लोग भले ही ना हो।
हाँ, उसकी बुनियाद पवित्र है। फिर कैथोलिक का मतलब है सार्वभौमिक या विश्वव्यापी। ये किसी एक देश या जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, और इसमें आस्था की पूरी सच्चाई पाई जाती है, ऐसा विश्वास है।
और आखिरी प्रेरितिक?
हाँ, प्रेरितिक यानी अपोस्टोलिक। इसका मतलब है कि ये चर्च यीशु के जो पहले शिष्य थे, प्रेरित, उनकी शिक्षाओं पर आधारित है
और उनका जो अधिकार था वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिशपों के जरिए आगे बढ़ता है।
लेकिन क्या चर्च को देखने का नजरिया हमेशा से ऐसा ही रहा है? मैंने सुना है द्वितीय वैटिकन परिषद ने इसमें कुछ बदलाव लाए थे।
हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। द्वितीय वैटिकन परिषद जो 1960 के दशक में हुई, उसने चर्च को सिर्फ एक ऊपर से नीचे वाले ढांचे मतलब हायरार्की के तौर पर देखने के बजाय ईश्वर के लोग यानी पीपल ऑफ गॉड और मसीह का शरीर बॉडी ऑफ क्राइस्ट के रूप में देखने पे जोर दिया।
तो इससे क्या फर्क पड़ा?
इससे जो आम सदस्य हैं चर्च के, जिन्हें लेटी कहते हैं, उनकी गरिमा और चर्च के मिशन में उनकी हिस्सेदारी पर बहुत बल दिया गया।
मतलब पादरी और आम लोग सब मिलकर चर्च है।
अच्छा।
और चर्च की एक सच्चाई ये भी है, जिसे ओ कॉलिंस भी मानते हैं, कि वो एक ही साथ दिव्य भी है और मानवीय भी। जैसा किसी ने कहा है, ये पापियों के लिए अस्पताल है, ना कि सिर्फ नेक लोगों का कोई क्लब। इसमें हर तरह के लोग हैं।
ये बात सोचने वाली है। चलिए अब संस्कारों पर आते हैं, जिनका जिक्र पहले हुआ था। वो सांस्कारिक सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है?
सिद्धांत तो वही है कि ईश्वर की जो अदृश्य कृपा है, वो हमें इन दृश्य बाहरी चिन्हों के जरिए मिलती है।
ठीक है।
कैथोलिक धर्म में 7 मुख्य संस्कार माने जाते हैं। इन्हें हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं समझने के लिए।
कौन कौन से?
पहला ग्रुप है दीक्षा यानी इनिशिएशन का। इसमें आते हैं बपतिस्मा, बैप्टिज्म, पुष्टिकरण, कॉन्फर्मेशन और यूकारिस्ट। ये चर्च में शामिल होने और मजबूत होने के संस्कार हैं।
ठीक। दूसरा
ग्रुप है चिकित्सा यानी हीलिंग का। इसमें आते हैं सुलह या पाप स्वीकृति, रेकन्सिलिएशन, कन्फेशन
जिसे कहते हैं।
हाँ, वही। और बीमारों का अभिषेक, एनॉइंटिंग ऑफ द सिक। ये आध्यात्मिक और कुछ हद तक शारीरिक चंगाई के लिए हैं।
और तीसरा ग्रुप?
तीसरा है सेवा या व्यवसाय यानी वोकेशन का। इसमें आते हैं विवाह यानी मैट्रिमनी और पवित्र आदेश यानी पुरोहिताई या पादरी बनना। ये जीवन में सेवा के खास रास्तों के लिए हैं।
और इन सातों में यूकारिस्ट को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है ना, जिसे मास या होली कम्युनियन भी कहते हैं।
हाँ, बिल्कुल। इसे कैथोलिक जीवन का स्रोत और शिखर कहा जाता है। इसमें यह विश्वास है कि प्रार्थना के दौरान जो रोटी और वाइन होती है, वो सचमुच मसीह के शरीर और खून में बदल जाती है।
सचमुच बदल जाती है, सिर्फ प्रतीक नहीं?
हाँ, कैथोलिक विश्वास यही है। इसे ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं। ये सिर्फ याद दिलाने का चिन्ह नहीं, बल्कि वास्तविक उपस्थिति मानी जाती है। और इसके अलावा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और साल भर जो अलग अलग त्योहार और मौके आते हैं, जिन्हें लिटर्जिकल कैलेंडर कहते हैं, उनको मनाना भी ईसाई जीवन का हिस्सा है।
अब आते हैं नैतिकता पर। कई बार लगता है कि धर्म का मतलब है बहुत सारे नियम, कि ये मत करो, वो मत करो। क्या कैथोलिक नैतिकता ऐसी ही है?
ओ कॉलिंस के मुताबिक बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि यह ईश्वर के प्रेम के जवाब में एक सकारात्मक जीवन जीने की कोशिश है।
अच्छा, सकारात्मक?
हाँ। लक्ष्य सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अच्छे गुण अपनाना, सद्गुणी बनना और ईश्वर के करीब आना, जिसे पवित्रता कहते हैं।
तो इसके लिए गाइडेंस कहाँ से मिलता है?
इसके कई स्रोत हैं। सबसे पहले तो बाइबल, जिसमें 10 आज्ञाएं हैं, यीशु के उपदेश हैं जैसे बीटीट्यूड्स। फिर है प्राकृतिक कानून।
प्राकृतिक कानून?
हाँ, यानी वो नैतिक सच्चाइयां जो माना जाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपनी समझ और तर्क से जान सकता है। जैसे कि झूठ बोलना गलत है या किसी बेगुनाह को मारना गलत है।
अच्छा।
और
तीसरा स्रोत है चर्च की शिक्षाएं, जो इन सब को समझने और लागू करने में मदद करते हैं।
इसमें हमारे अपने विवेक, हमारी अपनी समझ, कॉन्शियंस की क्या भूमिका है। विवेक को आखिरी नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है, यानी हर इंसान को आखिरकार अपने विवेक की आवाज सुननी चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि हमारा विवेक सही जानकारी से भरा हो, उसे प्रशिक्षित किया गया हो, और इसमें चर्च की शिक्षाएं मदद करती हैं। विवेक को अंधेरे में नहीं छोड़ना है।
और ये नैतिकता सिर्फ पर्सनल लेवल पर है या समाज से भी जुड़ती है?
ये बहुत अहम सवाल है। नैतिकता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती। कैथोलिक सामाजिक शिक्षण, कैथोलिक सोशल टीचिंग, इसी नैतिक सोच को समाज के बड़े मुद्दों पर लागू करता है।
जैसे कि?
जैसे गरीबी, नाइंसाफी, युद्ध, पर्यावरण की देखभाल। इन सब पर चर्च की एक नैतिक सोच है।
इसमें हर इंसान की गरिमा, आपसी भाईचारा यानी सॉलिडेरिटी, और सबकी भलाई यानी कॉमन गुड जैसे उसूलों पर बहुत जोर दिया जाता है।
ठीक है। अब एक और पहलू पर आते हैं, मैरी यानी यीशु की माँ और संत। कैथोलिक धर्म में उनका खास स्थान है।
क्या उन्हें पूजा जाता है?
देखिए, यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। पूजा या आराधना, जिसे लैट्रिया कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए होती है।
सिर्फ ईश्वर के लिए?
हाँ, संतों और मैरी को सम्मान दिया जाता है, जिसे डुलिया कहते हैं, और मैरी क्योंकि यीशु की माँ है, उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है, जिसे हाइपर डुलिया कहते हैं।
तो संत कौन है?
संत ईश्वर नहीं है, वो आस्था के ऐसे हीरो या हीरोइन हैं जिन्होंने एक मिसाली जिंदगी जी, ईश्वर के बहुत करीब रहे, और माना जाता है कि वे स्वर्ग से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी मदद करते हैं।
और ये संतों का समागम क्या है?
इसका मतलब है कि चर्च के जितने भी सदस्य हैं जो आज जिंदा हैं और जो गुजर चुके हैं और स्वर्ग में हैं, वो सब एक रूहानी परिवार में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं।
अच्छा, और मैरी के बारे में खास क्या माना जाता है?
उन्हें ईश्वर की माँ कहा जाता है। ये शब्द थियोटोकोस कहलाता है, और ये इस बात पर जोर देता है कि उनके बेटे येशु वास्तव में ईश्वर थे। उन्हें सबसे पहली शिष्या भी माना जाता है। उनके बारे में चार मुख्य सिद्धांत या मान्यताएं हैं।
संक्षेप में बता सकते हैं?
हाँ, पहला तो यही कि वो ईश्वर की माँ है, दूसरा कि वो हमेशा कुवारी रहीं, तीसरा कि वो बिना मूल पाप के पैदा हुई थीं, इसे निष्कलंक गर्भावमन कहते हैं, और चौथा कि उन्हें शरीर और आत्मा समेत स्वर्ग उठा लिया गया, जिसे स्वर्गारोहण कहते हैं।
काफी सारी बातें हैं। अच्छा, कई बार ये सवाल उठता है कि कैथोलिक लोग बाइबल को कम मानते हैं और अपनी परंपराओं पर ज्यादा जोर देते हैं, क्या ये सही है?
ये एक बहुत आम गलतफहमी है। एक्चुअली ओ कॉलिंस इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं। कैथोलिक बाइबल को ईश्वर का वचन मानते हैं, ये मानते हैं कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और इसमें सच्चाई है।
तो फिर दिक्कत कहाँ है?
दिक्कत ये है कि इसे अक्षरशः, मतलब बिल्कुल शब्द दर शब्द या कट्टर तरीके से नहीं पढ़ा जाता। ये समझना जरूरी है कि ये कब लिखी गई, किन हालात में, किस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई, लिखने वाले का मकसद क्या था, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है।
तो फिर ये जो परंपरा है, ट्रेडिशन, उसका क्या रोल है?
परंपरा का मतलब सिर्फ पुरानी रस्में नहीं है। कैथोलिक नजरिए से परंपरा का मतलब है चर्च के अंदर ईसा मसीह के संदेश का जिंदा प्रसारण।
जिंदा प्रसारण मतलब?
मतलब इसमें चर्च के जो विश्वास के कथन हैं, क्रीड्स, जो बड़ी बड़ी सभाएं हुई, काउंसिल्स, उनके फैसले, पुराने जो चर्च फादर्स या धर्मगुरु थे उनकी लिखाई, पूजा का जो तरीका है, लिटर्जी, ये सब शामिल है। ये एक तरह की बहती हुई नदी है जो यीशु के संदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाती है।
और बाइबल?
तो बाइबल इसी जिंदा परंपरा का लिखित दिल है, उसका सबसे जरूरी हिस्सा, लेकिन उसे इसी व्यापक धारा के अंदर रखकर समझा जाता है, अलग करके नहीं।
तो बाइबल और परंपरा दोनों जरूरी हैं।
हाँ, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आस्था के एक ही खजाने को हम तक पहुंचाते हैं, और मैजिस्टेरियम यानी पोप और दुनिया भर के बिशप मिलकर उनका काम है इस खजाने की सही व्याख्या करना और उसे सुरक्षित रखना।
अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं आज के चर्च की। और कॉलिंस कहते हैं कि चर्च अब मुख्य रूप से यूरोपीय संस्था नहीं रहा, इसका क्या मतलब है?
ये आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पिछले 50-60 सालों में कैथोलिक आबादी का जो केंद्र है वो यूरोप या उत्तरी अमेरिका से हटकर ग्लोबल साउथ की तरफ चला गया है।
ग्लोबल साउथ यानी?
यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। आज ज्यादातर कैथोलिक इन महाद्वीपों में रहते हैं, तो ये एक तरह से चर्च के कैथोलिक यानी सार्वभौमिक होने का असली सबूत है कि वो किसी एक संस्कृति या इलाके तक सीमित नहीं है।
और ये जो शब्द है इनकल्चुरेशन,
इनकल्चुरेशन,
इसका क्या मतलब है इस संदर्भ में?
इनकल्चुरेशन का मतलब है कि ईसाई संदेश के जो मूल तत्व हैं उनको बदले बिना उसे स्थानीय संस्कृति के रंग में ढालना, वहां की भाषा, कला, संगीत, सोचने का तरीका, रीति रिवाज, इन सब का इस्तेमाल करना ताकि संदेश लोगों को अपनी संस्कृति में समझ आए।
जैसे भारत में हम देखते हैं कहीं कहीं आरती या भजन के अंदाज में प्रार्थना होती है।
हाँ, ये उसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इससे चर्च में बहुत विविधता और जिंदा दिली आती है।
हाँ, ये कभी कभी एकता बनाए रखने के लिए एक चुनौती भी बन सकता है,
लेकिन ये चर्च को रूहानी और सांस्कृतिक रूप से बहुत अमीर भी बनाता है।
बिल्कुल। आखिर में थोड़ी बात करते हैं चर्च के अधिकार के ढांचे की। पोप, परिषदें, मैजिस्टीरियम, पोप की भूमिका क्या है और क्या वो कभी गलती नहीं कर सकते जैसा कुछ लोग सोचते हैं?
पोप जो रोम के बिशप होते हैं उन्हें सेंट पीटर, यीशु के मुख्य शिष्य, का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो चर्च की एकता का एक दिखाई देने वाला प्रतीक हैं और दुनिया भर के जो बिशप हैं उनके समूह के मुखिया हैं।
और वो अचूकता वाली बात पेपल इनफॉलिबिलिटी?
हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसे बहुत ज्यादा गलत समझा जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पोप कभी कोई गलती नहीं करते, या वो हर विषय के एक्सपर्ट हैं, या वो व्यक्तिगत रूप से पापी नहीं हो सकते।
अच्छा, तो फिर क्या मतलब है?
ये एक बहुत ही खास और दुर्लभ स्थिति है, एक करिश्मा माना जाता है। ये सिर्फ तब लागू होता है जब पोप पूरे चर्च के लिए आधिकारिक तौर पर आस्था या नैतिकता से जुड़े किसी सिद्धांत को अंतिम रूप से परिभाषित करते हैं।
मतलब बहुत ही सीमित दायरे में।
हाँ, बहुत सीमित और बहुत दुर्लभ। इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है। ये कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। और पोप अकेले फैसले नहीं लेते। इक्यूमेनिकल परिषदें जैसे नाइसिया, ट्रेंट या हाल की द्वितीय वेटिकन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
ये क्या होती हैं?
इनमें दुनिया भर के बिशप पोप के साथ मिलकर चर्च के लिए बड़े और अहम फैसले लेते हैं। इनका अधिकार बहुत माना जाता है। और मैजिस्टेरियम का मतलब है पोप और उनके साथ एकता में जुड़े सभी बिशप। माना जाता है कि पवित्र आत्मा आस्था की सही समझ को बनाए रखने और उसकी व्याख्या करने में उनका मार्गदर्शन करती है।
ठीक है, तो इस पूरी बातचीत से अगर हम कुछ मुख्य बातें या थीम्स निकालें तो क्या होंगी? एक बात जो मुझे खास तौर पर महसूस हुई वो है आस्था और तर्क का साथ साथ चलना।
हाँ, ये कैथोलिक सोच का एक बहुत अहम पहलू है। यहाँ आस्था और तर्क को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त माना जाता है।
जैसे
पोप जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था, ये दो पंखों की तरह हैं जिनसे इंसान सच की ओर उड़ान भरता है।
ऑगस्टीन से लेके एक्विनास तक एक लंबी बौद्धिक परंपरा रही है।
भारत जैसे देश में जहाँ ज्ञान और दर्शन की अपनी इतनी मजबूत परंपराएं हैं, ये विचार शायद खास तौर पर प्रासंगिक लगे कि धर्म और तर्क साथ चल सकते हैं, है ना? बिल्कुल। दूसरी बात जो उभर कर आती है वो है परंपरा का एक जिंदा चीज की तरह विकसित होना। ये रुकी हुई ठहरी हुई नहीं है।
हाँ, ये बात भी बहुत दिलचस्प लगी।
ऑकलेंस दिखाते हैं कि कैथोलिक परंपरा एक बहती नदी की तरह है, ना कि कोई जमा हुआ तालाब। मूल बातें वही रहती हैं, लेकिन उनकी समझ गहरी होती जाती है। वक्त के साथ नए सवाल उठते हैं, नए जवाब खोजे जाते हैं। जैसे हमने द्वितीय वेटिकन परिषद की बात की,
भारत में भी हम देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराएं भी समय के साथ बदलती हैं, नई व्याख्याएं सामने आती हैं। तो ये विकास और निरंतरता का संतुलन सोचने लायक है।
एकदम। तीसरा, वो सांस्कारिक सिद्धांत कि दिव्य या ईश्वर हमें भौतिक चीजों के जरिए भी मिलता है।
हाँ, ये बात मुझे काफी अनोखी लगी।
ये धर्म को सिर्फ दिमाग या दिल तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारे पूरे जीवन, हमारी सारी इंद्रियों से जोड़ देता है। रोजमर्रा की चीजें, कला, संगीत, रस्में, ये सब ईश्वर से जुड़ने का जरिया बन सकते हैं।
भारतीय धार्मिक परंपराओं में भी हम देखते हैं कि कैसे अनुष्ठान, मूर्तियां, पवित्र स्थान, कला, ये सब भक्ति और आध्यात्मिकता को व्यक्त करने के कितने जरूरी हिस्से हैं। यहाँ कुछ समानताएं और शायद कुछ फर्क भी देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल, तुलना करना रोचक होगा। चौथा थीम एक विश्वव्यापी चर्च, लेकिन हर जगह अपनी अलग रंगत, अपनी लोकल पहचान के साथ।
हाँ, कैथोलिक का मतलब है सबके लिए, पर एक जैसा होना जरूरी नहीं।
वो जो इनकल्चरेशन की बात हमने की, वो इसी विविधता को जगह देता है।
भारत में ही हम देखें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समुदायों में कैथोलिक लोग अपनी स्थानीय संस्कृति के साथ अपनी आस्था को जीते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक वैश्विक विश्वास स्थानीय जड़ों के साथ पनप सकता है।
सही कहा। और पांचवा, कि आस्था का एक सामाजिक पहलू भी है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है।
हाँ, ये कैथोलिक सामाजिक शिक्षण वाली बात।
हाँ, ईश्वर में विश्वास का मतलब है समाज की भलाई के लिए, खासकर गरीबों और कमजोरों की भलाई के लिए काम करना। न्याय, शांति, हर इंसान की गरिमा, ये सब आस्था से ही निकलते हैं।
भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं, ये विचार के धर्म सामाजिक बदलाव का एक स्रोत बन सकता है काफी मायने रखता है।
बिल्कुल।
ऑकलिंस के काम में कुछ ऐसे पंक्तियां या विचार हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, जिसका साल ये है, कैथोलिक चर्च कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें पुरानी चीजें सहेज कर रखी जाती हैं, बल्कि एक जिंदा परंपरा है जो अपनी पहचान बनाए रखते हुए लगातार विकसित होती है।
ये बात परंपरा और बदलाव के उस संतुलन को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है ना? एक और विचार जो पोप जॉन पॉल द्वितीय का है, पर ओ'कॉलिंस उसे बहुत अहमियत देते हैं। आस्था और तर्क दो पंखों की तरह हैं जिन पर इंसान की आत्मा सच की खोज में उड़ान भरती है।
हाँ, ये दिखाता है कि सवाल पूछना या सोचना ये धर्म के खिलाफ नहीं है।
चर्च को बनाता है और चर्च यूखारिस्ट को बनाता है।
मतलब पूजा और समुदाय एक दूसरे से जुड़े हैं।
हाँ, उनके बीच एक गहरा अटूट रिश्ता है और सामाजिक न्याय के बारे में ये विचार कितना शक्तिशाली है। गरीबों को प्राथमिकता देना किसी राजनीतिक विचारधारा या वर्ग संघर्ष का नतीजा नहीं, बल्कि इस विश्वास का सीधा नतीजा है कि ईश्वर खुद यीशु मसीह में इंसान बन गया।
ये सामाजिक काम को एक गहरी रूहानी बुनियाद देता है।
बिल्कुल।
तो इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है? इन्हें हम कैसे देख सकते हैं अपने जीवन में?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखें तो शायद प्रार्थना या ध्यान के जो अलग अलग तरीके हैं कैथोलिक परंपरा में, उन्हें समझने में मदद मिल सकती है। या फिर जैसे इग्नेशियन आध्यात्मिकता का एक तरीका है विवेक, डिसर्नमेंट का, यानी जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपनी अंदरूनी इच्छाओं और ईश्वर की मर्जी को समझने की कोशिश करना, ये जीवन में गाइड कर सकता है।
और वो सांस्कारिक नजरिया?
माँ, रोज की भागदौड़ में भी छोटी छोटी चीजों में, प्रकृति में, लोगों के साथ रिश्तों में ईश्वर की झलक देखने की कोशिश करना, ये जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकता है।
और शायद नैतिक दुविधाओं से जूझने में भी कुछ मदद मिल सकती है।
हाँ बिल्कुल, जैसे अपने विवेक को सही जानकारी देके उसे नैतिक फैसलों का आधार बनाने का विचार, या फिर कोई भी फैसला लेते समय ये सोचना कि इसका असर सबकी भलाई, कॉमन गुड पर क्या पड़ेगा। ये सिद्धांत हमें काम की जगह पर या निजी जिंदगी में मुश्किल हालात में रास्ता दिखा सकते हैं। और हर इंसान की गरिमा का सम्मान करने का उसूल तो खैर हमेशा ही अहम है।
अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच बेहतर समझ और बातचीत के लिए भी शायद इससे कुछ सीखा जा सकता है।
हाँ जरूर, अपनी मान्यताओं पर कायम रहते हुए भी दूसरों को सम्मान देना, उनसे सीखने के लिए तैयार रहना और संवाद करना, ये कैथोलिक मॉडल कम से कम सिद्धांत में हमें यही सिखाता है। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश में ये हुनर, ये नजरिया तो बहुत ही जरूरी है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से मुझे जो एक बात सबसे ज्यादा समझ आई वो ये कि कैथोलिक धर्म काफी हद तक एक दोनों ओर वाली सोच रखता है। मतलब ये परंपरा और विकास, आस्था और तर्क, पूरी दुनिया के लिए एक होना और हर जगह अलग होना, इन सबको एक साथ साधने की कोशिश करता है। और ये जो जटिलता है शायद यही इसकी ताकत है और इतने लंबे समय तक बने रहने का राज भी।
सही कहा। मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली रही वो शायद वो संस्कारिक विश्व दृष्टि ही है। ये विचार कि हमारा ये भौतिक जीवन, हमारी ये दुनिया दैवीय अनुभव का जरिया बन सकती है। ये धर्म को सिर्फ दिमागी कसरत या कुछ रस्मों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे जिंदगी के हर रंग में घोल देता है। और साथ ही ये सोचना भी लाजमी है कि आज जब चर्च का चेहरा बदल रहा है, वो ग्लोबल साउथ में ज्यादा फैल रहा है, तो ये विविधता और एकता का संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये एक लगातार चलने वाला मंथन है जिसके जवाब शायद वक्त के साथ मिलेंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।